नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डिजिटल गोल्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रौद्योगिकी और व्यवसाय पत्रकार नेथेनियल पॉपर की बिटकॉइन के आरंभिक वर्षों पर आधारित खोज पर गैर कथा पुस्तक है। यह किसी तकनीकी मार्गदर्शिका की तरह केवल कोड या निवेश सलाह नहीं देती। इसके बजाय यह दिखाती है कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद एक अनाम रचनाकार सातोशी नाकामोतो के प्रस्ताव से शुरू हुआ प्रयोग किस तरह वैश्विक आंदोलन बना। पॉपर साइफर पंक विचारधारा, इंटरनेट उद्यमिता, अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में रहने वाले उपयोगकर्ताओं, निवेशकों और कानून प्रवर्तन संस्थाओं के परस्पर टकराते हितों को जोड़ते हैं। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या धन के भरोसे को बैंकों, सरकारों और मध्यस्थों से हटाकर खुले कंप्यूटर नेटवर्क में रखा जा सकता है। इसके उत्तर में लेखक न तो बिटकॉइन को निर्विवाद मुक्ति का साधन बताते हैं, न केवल सट्टा, वे इसके समर्थकों की वैचारिक प्रतिबद्धता, असाधारण धन सृजन, अपराध से जुड़ी चिंताओं और तकनीकी कमजोरियों को साथ रखते हैं। इसीलिए यह पुस्तक डिजिटल मुद्रा की उत्पत्ति के साथ साथ विश्वास, नियंत्रण और वित्तीय स्वतंत्रता की बदलती परिभाषा का इतिहास भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, केंद्रीय संस्थान के बिना भरोसे की समस्या का बिटकॉइन समाधान। डिजिटल गोल्ड का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक आधार यह है कि इंटरनेट पर मूल्य भेजने में भरोसे की समस्या कैसे सुलझाई जाए। पारंपरिक भुगतान व्यवस्था में बैंक या भुगतान कंपनी खातों का लेखा रखती है, लेन देन की पुष्टि करती है और विवाद होने पर हस्तक्षेप कर सकती है। बिटकॉइन ने इस भूमिका को किसी एक संस्था को देने के बजाय नेटवर्क में वितरित करने का प्रस्ताव रखा। पॉपर बताते हैं कि क्रिप्टोग्राफी से व्यक्ति अपने लेन देन पर हस्ताक्षर करता है, जबकि सार्वजनिक बही खाता सभी को पहले हुए हस्तांतरणों की जांच करने देता है। नेटवर्क के नियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि एक ही बिटकॉइन को दो बार खर्च न किया जा सके। इस व्यवस्था का अर्थ पूर्ण अराजकता नहीं, बल्कि नियमों का अलग प्रकार का प्रशासन है। भरोसा बैंक के अधिकारी या सरकारी गारंटी में कम, खुले सॉफ्टवेयर, सामूहिक सत्यापन और आर्थिक प्रोत्साहनों में अधिक रखा जाता है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि तकनीकी विकेंद्रीकरण अपने आप मानवीय जोखिम समाप्त नहीं करता। उपयोगकर्ता निजी कुंजी खो सकता है, विनिमय मंच असफल हो सकता है और कानून अलग स्तर पर दबाव डाल सकता है। इसलिए बिटकॉइन का नवाचार केवल डिजिटल सिक्का नहीं है, यह इस प्रश्न का व्यावहारिक परीक्षण है कि वित्तीय रिकॉर्ड और सहमति को कौन नियंत्रित करेगा। दूसरा, सातोशी नाकामोतो और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की सीमित आपूर्ति। पुस्तक में सातोशी नाकामोतो की गुमनामी एक रहस्य भर नहीं, बिटकॉइन की प्रकृति को समझने का माध्यम है। नाकामोतो ने 2008 में बिटकॉइन का विचार प्रस्तुत किया और शुरुआती विकास में भाग लिया, लेकिन बाद में सार्वजनिक जीवन से हट गए। किसी स्पष्ट संस्थापक, कंपनी या केंद्रीय प्रबंधक का न होना बिटकॉइन समर्थकों के लिए इसकी विकेंद्रीकृत विश्वसनीयता का हिस्सा बना। फिर भी पॉपर के वर्णन से समझ आता है कि आरंभिक सॉफ्टवेयर और समुदाय बनाने में कुछ व्यक्तियों की भूमिका निर्णायक थी। बिटकॉइन को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड कहने का कारण उसकी सीमित आपूर्ति की डिजाइन है। कुल इकाइयों की अधिकतम सीमा 21 लाख निर्धारित की गई, जबकि प्रत्येक इकाई को बहुत छोटे भागों, सातोशी, में बांटा जा सकता है। समर्थकों के लिए यह सीमा उन राष्ट्रीय मुद्राओं से भिन्न है जिनकी आपूर्ति केंद्रीय बैंक बढ़ा सकते हैं। उनका तर्क है कि पूर्व निर्धारित कमी बचत को राजनीतिक निर्णयों और मनमाने विस्तार से बचाती है। पुस्तक इस विश्वास को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में रखती है, विशेषकर वित्तीय संकट और संस्थानों के प्रति अविश्वास के दौर में। हालांकि सीमित आपूर्ति मूल्य स्थिरता की गारंटी नहीं देती, मांग में तेज बदलाव से कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। इस तनाव से पुस्तक दिखाती है कि बिटकॉइन एक साथ विनिमय माध्यम, बचत संपत्ति और वैचारिक प्रतीक क्यों बन गया। तीसरा, वैश्विक समुदायों ने बिटकॉइन को अलग अलग आर्थिक जरूरतों से अपनाया। पॉपर की पुस्तक की विशिष्टता यह है कि वह बिटकॉइन को केवल सिलिकॉन वैली की कहानी नहीं बनाती। इसके आरंभिक समर्थकों में गोपनीयता और राज्य शक्ति को लेकर चिंतित साइफर पंक थे, लेकिन साथ ही अर्जेंटीना जैसे देशों के लोग भी थे जहां मुद्रास्फीति, पूंजी नियंत्रण या मुद्रा पर अविश्वास ने वैकल्पिक साधनों की खोज को अर्थपूर्ण बनाया। चीन में उद्यमियों और खनन से जुड़े प्रतिभागियों का उभार भी बताता है कि खुला नेटवर्क स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग उपयोग और व्यवसाय पैदा करता है। एक ही प्रौद्योगिकी किसी के लिए सरकार से स्वतंत्र संपत्ति हो सकती है, किसी के लिए सीमा पार धन भेजने का साधन और किसी दूसरे के लिए उच्च जोखिम वाला निवेश। यह विविधता बिटकॉइन के पक्ष और विरोध दोनों को समझने में जरूरी है। समर्थक इसे ऐसी वैश्विक प्रणाली मानते हैं जिसमें भागीदारी के लिए बैंक खाता या राष्ट्रीय सीमाओं की अनुमति अनिवार्य नहीं। आलोचक पूछते हैं कि इंटरनेट पहुंच, मूल्य अस्थिरता और विनिमय मंचों पर निर्भरता इस दावे को कितना सीमित करती है। पुस्तक इन प्रश्नों का सरल समाधान नहीं देती। वह दिखाती है कि पैसे की उपयोगिता केवल तकनीकी दक्षता से तय नहीं होती। लोगों का अनुभव, राजनीतिक परिस्थितियां, स्थानीय संस्थाओं पर भरोसा और जोखिम उठाने की क्षमता भी किसी मुद्रा के अर्थ को आकार देते हैं। चौथा, उद्यमिता। विनिमय मंच और माउंट गॉक्स ने सुविधा के साथ नया केंद्रीकरण बनाया। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल विकेंद्रीकृत हो सकता है, पर आम उपयोगकर्ता को खरीदने, बेचने और सुरक्षित रखने के लिए अक्सर कंपनियों की जरूरत पड़ी। डिजिटल गोल्ड इस विरोधाभास को आरंभिक विनिमय मंचों, वॉलेट सेवाओं और निवेशकों की कहानी के जरिए सामने लाती है। इन मध्यस्थों ने तकनीकी रूप से कठिन व्यवस्था को व्यापक लोगों के लिए उपयोगी बनाया। उन्होंने स्थानीय मुद्रा और बिटकॉइन के बीच पुल बनाया, ग्राहक सहायता दी और बाजार में तरलता पैदा की। पर सुविधा के बदले उपयोगकर्ताओं की निजी कुंजियां और धन कुछ संस्थाओं के पास केंद्रित होने लगे। माउंट गॉक्स का पतन इस जोखिम का सबसे चर्चित उदाहरण बना। घटना ने यह अंतर उजागर किया कि बिटकॉइन नेटवर्क का नियमों के अनुसार चलना और किसी बिटकॉइन व्यवसाय का सुरक्षित या ईमानदार होना एक ही बात नहीं है। जब किसी मंच की सुरक्षा या प्रबंधन विफल होता है, अपरिवर्तनीय लेनदेन और कमजोर उपभोक्ता संरक्षण नुकसान को कठिन बना सकते हैं। पुस्तक इसीलिए तकनीक को उसके संस्थागत परिवेश से अलग नहीं देखती। इसका व्यावहारिक सबक यह है कि विकेंद्रीकृत संपत्ति भी पहचान, प्रबंधन, अभिरक्षा, सुरक्षा, अनुशासन और जवाबदेही की समस्याएं पैदा करती है। बैंक को हटाना अपने आप जोखिम नहीं हटाता, बल्कि जोखिमों का स्थान और जिम्मेदारी बदल देता है। अंत में सिल्क रोड, नियमन और सट्टेबाजी ने स्वतंत्र मुद्रा के दावे को परखा। पुस्तक बिटकॉइन के आदर्शवादी दावों के साथ उसके विवादित उपयोगों को भी रखती है। सिल्क रोड जैसे ऑनलाइन बाजार में बिटकॉइन के प्रयोग ने गोपनीयता, अपराध और राज्य की निगरानी पर तीखी बहस पैदा की। बिटकॉइन के पते नाम से सीधे नहीं जुड़े होते, लेकिन लेन देन का रिकॉर्ड सार्वजनिक बही खाते में रहता है, इसलिए इसे पूर्ण अनामता समझना भ्रामक है। फिर भी उस समय इसकी संरचना ने उन गतिविधियों को आकर्षित किया जिनमें पारंपरिक भुगतान प्रणालियां बाधा डालती थीं। नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया ने दिखाया कि डिजिटल मुद्रा राष्ट्रीय कानूनों से बाहर नहीं रहती। विनिमय मंचों को नियमों, पहचान जांच और धन शोधन विरोधी अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कीमत में तेज वृद्धि ने निवेशकों और सट्टेबाजों को खींचा। इससे शुरुआती समर्थकों को संसाधन और सार्वजनिक ध्यान मिला, पर रोजमर्रा की मुद्रा के रूप में इसकी उपयोगिता पर प्रश्न भी गहरे हुए। यदि मूल्य लगातार तेजी से बदलता हो तो खरीदार और विक्रेता उसे स्थिर हिसाब की इकाई की तरह अपनाने से हिचक सकते हैं। पॉपर का चित्रण बताता है कि बिटकॉइन की राजनीतिक अपील, बाजार मूल्य और नियम की स्थिति एक दूसरे से अलग नहीं है। स्वतंत्रता का दावा तभी परखा जाता है जब उसके साथ धोखाधड़ी, उपभोक्ता हानि, अवैध उपयोग और सार्वजनिक जवाबदेही जैसे वास्तविक प्रश्न जुड़ते हैं। निष्कर्ष में डिजिटल गोल्ड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बिटकॉइन को केवल कीमत के चार्ट, निवेश उत्पाद या तकनीकी शब्दावली के रूप में नहीं समझना चाहते। वित्त, प्रौद्योगिकी, इंटरनेट संस्कृति, सार्वजनिक नीति और आधुनिक इतिहास में रुचि रखने वाले पाठक इससे एक सुलभ प्रवेश बिंदु पाते हैं। नए पाठक को क्रिप्टोग्राफी, सार्वजनिक बहीखाता, खनन और सीमित आपूर्ति जैसी बुनियादी अवधारणाओं का संदर्भ मिलता है, जबकि अधिक जानकार पाठक शुरुआती समुदाय के वैचारिक और व्यावसायिक संघर्षों को एक साथ देख सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ किसी मुद्रा की भविष्य कीमत का अनुमान देना नहीं है, बल्कि यह पाठक को प्रोटोकॉल और उसके ऊपर बनी कंपनियों के अंतर, निजी कुंजी की जिम्मेदारी, विनियमन की भूमिका और तकनीकी दावों की सीमाओं पर बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती है। समान विषय की कई पुस्तकों में या तो तकनीकी व्याख्या प्रधान होती है या निवेश पर केंद्रित दृष्टि। पॉपर की पुस्तक अलग इसलिए है कि यह बिटकॉइन को बनाने, अपनाने और उससे लाभ या हानि उठाने वाले लोगों के माध्यम से समझाती है। यह दृष्टि अमूर्त विचारों को उनके सामाजिक परिणामों से जोड़ती है। पुस्तक अपने समय के आरंभिक बिटकॉइन दौर का इतिहास है, इसलिए बाद के तकनीकी और बाजार परिवर्तनों के लिए इसे नवीनतम मार्गदर्शक नहीं मानना चाहिए। फिर भी धन पर भरोसा किसे दिया जाए, खुले नेटवर्क किस तरह संस्थाओं को चुनौती देते हैं और नवाचार के साथ जोखिम क्यों बढ़ते हैं, इन स्थायी प्रश्नों के कारण इसका महत्व बना रहता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं नाथेनियल पॉपर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।